السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سورہ جو ہے بہت رچ ہے، یعنی اس میں اس کا کانٹیکسٹ بہت زیادہ ہے. اس کو اس کا احاطہ کرنا اس کی آیات کا سے تو سارے قرآن میں ہی ایسا ہی ہے، مگر خاص طور پہ اس میں اتنی ڈیٹیل ہے کہ ان آیات کا پورا حق تو ادا نہیں ہو سکتا بالکل، مطلب سرفیس سے ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں. اسی لیے ضروری ہے کہ آپ کلاس کے بعد ضرور تدبر کیا کیجیے، ان آیات کو دوبارہ پڑھا کریں، کیونکہ جب آپ کا سبق ہوتا ہے نا جو، تو اس کے اندر بہت سارے ٹاپکس کور ہو جاتے ہیں. اور میں نے نوٹس یہ کیا ہے کہ جب آپ لوگ بعد میں جو بات کرتے ہیں وہ آپ کے ذہن میں وہ والی بات ہوتی ہے جو بالکل اینڈ پہ آئی ہوتی ہے، شروع کی ساری باتیں آپ زیادہ تر بھول جاتے ہیں. انسان کا ذہن ایسے نا، وہ ایک وقت میں بہت زیادہ چیزیں کمپریہنڈ نہیں کر پاتا، تو ضروری ہے کہ آپ بعد میں اس کو پڑھا کریں تاکہ وہ جو پیچھے آیتیں گزر گئی ہیں ان کے اوپر بھی تو آپ غور کریں نا. یہ تو نہیں کہ سبق کے اینڈ والی صرف آیات ہیں جو ضروری ہیں اور شروع کی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کو بھی دیکھا کریں، وہ ٹاپکس بھی توجہ کے قابل ہوتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر غور و فکر کریں. تو آج دیکھتے ہیں سورۃ الزمر آیت نمبر 42 سے 60 تک. اللہ یتوفى الانفس، اللہ تعالیٰ فوت کرتا ہے نفسوں کو، حین موتیہا، ان کی موت کے وقت. یہ تو آپ کو پتا ہے کہ موت کے وقت تو روح قبض ہوتی ہے. والتی لم تموت فی منامیہا، اور وہ جو نہیں مرتے اپنی نیند میں. اس کا مطلب نیند میں بھی ایک طرح کی موت ہوتی ہے، اسی وجہ سے محاورہ بھی ہے نا کہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے. وہ اسی وجہ سے کہ ہم ایک چھوٹی موت کے ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں جب ہم سوتے ہیں. فَيُمْسِكُ الَّذِي قَضَى عَلَيْهَا، بس روک لیتا ہے اس کو جو فیصلہ کرتا ہے اس پر موت کا. جب موت دینی ہوتی ہے تو پھر اس روح کو وہ روک لیتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور بھیجتا ہے دوسری کو، دوسریوں کو، الى اجل مسمى، ایک مقرر وقت. اب یہ کیا بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ کیا چیز بھیجی جا رہی ہے، کیا چیز روکی جا رہی ہے، اور نیند میں ہم ایوری نائٹ کیا ایکسپیرینس کرتے ہیں. اور یہ بات ہمیں قرآن ہی بتاتا ہے سبحان اللہ، کہ نیند کے اندر ہم کس چیز سے گزر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالی نے ہمیں بتایا کہ جب انسان کے اوپر نیند آتی ہے تو اس کی ایک چھوٹی موت ہو جاتی ہے. یعنی آپ ایسا سمجھے کہ سمجھ لیں کہ قبض نفس یا قبض روح جو ہے اس کی دو صورتیں. ایک تو موت کے وقت آپ کو پتا ہے کہ وہ تو روح قبض ہو جاتی ہے، وہ موت اکبر ہے، بڑی موت ہے، اس میں تو سانس بھی بند، ختم. ایک عند الموت، عند النوم ہے، یعنی نیند کے وقت یہ ہم چھوٹی موت سے، موت اصغر سے گزرتے ہیں جس میں سانس بند نہیں ہوتا، لیکن ایک روح انسان کے اندر سے نکلتی ہے. اب روح کی، اب یہ سمجھے اس بات کو، روح کی سمجھ لیں کہ دو قسمیں ہیں، ایک ہے حیوانی روح اور ایک ہے نفسانی روح، نفسانی روح یا شعور بھی کہہ سکتے ہیں ہم. تو جو जो हैवानी रूह है वो नींद में भी इंसान के जिस्म में रहती है। और ये जो हमारे सारे फंक्शंस चल रहे होते हैं ना, मेदा काम कर रहा है, सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, और भी जो भी हमारे फंक्शंस चल रहे हैं, आप इधर से उधर करवट ले रहे हैं, ये सब ये हैवानी रूह के जरिए हो रहा है। एक नफसानी रूह है, ये जिस्म से निकल जाती है, बदन को छोड़ देती है और इधर उधर घूमती फिरती है, इसलिए इंसान ख्वाबों में कहीं से कहीं पहुंच जाता है। तो ये रूह घूम रही होती है, और अब जब ये निकलती है तो इसकी वजह से हमारी ये जो सिक्स सेंसेस हैं इनमें बड़ी कमी आ जाती है, हमारी सेंसेस में कमी आ जाती है, हम नहीं ना देख रहे हैं ना सुन रहे हैं, कुछ हमारे करीब कोई बात भी हो रही है हमें नहीं पता है। और अगर ज्यादा शोर होता है तो इतनी तेजी से, इस रूह की स्पीड बहुत तेज है, इतनी तेज से ये वापस लौट आती है, क्योंकि इसको अपनी जिस्म से बड़ी मोहब्बत है। तो अब अगर ये नफसानी रूह को ये कहीं खुशी मिलती है, कुछ होता है, तो हैवानी रूह पे भी इसका असर होता है। अगर नफसानी रूह कहीं परेशान होती है तो हैवानी रूह के ऊपर भी इसका असर है, इसलिए इंसान बार बार चीखना शुरू हो जाता है अपनी नींद में। बार दफा आप उठते हैं तो बड़े खुश होते हैं। तो अगर अल्लाह ताला फैसला कर ले कि उसने इंसान को जिंदगी देनी है, तो अल्लाह ताला इस नफसानी रूह को वापस लौटा देता। और अगर अल्लाह ताला फैसला कर दे कि इसको मौत देनी है, तो नफसानी रूह तो पहले ही निकली हुई है, ये जो हैवानी रूह है ये भी निकाल ली जाती है, दोनों रूहें मिल जाती है, ये एक ही चीज है, मतलब समझ ले कि कॉइन के दो दो तरफ, तो ये दोनों एक ही है, तो दोनों मिल जाती हैं फिर, और मौत वाकई हो जाती है इंसान की। इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि रोक लेता है उसको जब फैसला करता है मौत का, यानी कौन सी रूह को रोक लेता है, वो जो नफसानी रूह निकली थी ना उसको अल्लाह ताला रोक लेता है जब मौत का फैसला करता है, और भेज देता है दूसरियों को, यानी जो दूसरी जिनका अल्लाह ताला ने मौत का फैसला नहीं किया हुआ उनको वापस भेज देता है कि वापस जिस्म में चले जाएं, लेकिन कब तक, इला अजले मुसम्मा, एक मुकर्रर वक्त तक, ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए इसी तरह चलता रहेगा, एक मुकर्रर वक्त, एक वक्त ऐसा आएगा कि फिर रूह नहीं लौटेगी, या ये मोहलत दी गई कि एक मुकर्रर वक्त तक इसी तरह लौटती रहेगी हत्ता के मौत आ जाए, तो फिर दिन में भी मौत आ सकती या रात में आ सकती। इसीलिए आप देखते हैं बाज दफा लोगों का कहा जाता है, अच्छा भला रात को सोया था, पता नहीं क्या हुआ, फिर उठा ही नहीं, तो वो सोच लें सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला फरमाता है ना इन्ना फी ज़ालिक लआयातिल लिक़ौमी यतफक्करून, इसमें बेशक निशानियां उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। आप इसे एक आयत कोई लेके बैठ जाए ना तो आप इस पे गौर व फिक्र करें तो आप हैरान होंगे, अब हमारे पास इतना वक्त तो नहीं होता लेकिन आप इसके ऊपर सोच सकते हैं, नींद क्या चीज है और मौत क्या चीज है। नींद वाकई जब आप मसलन है कि ये ताक रातों में जागते हैं आप रमजान में और नींद का गलबा आने लगता है, इंसान इतनी कोशिश कर रहा होता है लेकिन नींद हावी होने लगती है, तो फिर इंसान को समझ आती है कि मैं कितना बेबस हूँ, बड़े बड़े बादशाह हूँ या अंबिया हूँ औलिया हूँ कोई भी हो, नेक से नेक इंसान हो या बहुत बड़ा अमीर कबीर हुक्मरान बादशाह कोई भी हो, नींद के सामने वो भी बेबस। सुभान अल्लाह, अल्लाह की एक मखलूक है ना नींद, उसके सामने इतने बेबस हो गए कि तुम्हारा जरा भी जोर नहीं चलता। तुम ये सोच लो कि अल्लाह ताला कितनी कुदरतों वाला है, वो क्या रब है जिसने एक छोटी सी अपनी मखलूक से तुम्हें मगलूब कर दी, छोटी सी मखलूक है अल्लाह की, नींद क्या चीज है, नजर भी नहीं आती, लेकिन कैसे वो जब आ जाती है तो इंसान अच्छा भला बड़ा पहलवान भी बेबस हो जाता है। आप देखे ना वो लोगों को जो अस्तग़फिरुल्लाह जो टॉर्चर करते हैं, तो मुजरिमों से राज उगलवाने के लिए वो क्या करते हैं कि उनको बहुत दिनों तक सोने नहीं देते, और जब सोने नहीं देते तो वो फिर इतने बेबस हो जाते हैं कि वो सारे राज उगल देते हैं। अब जब नींद के सामने इंसान ऐसा बेबस हो जाए तो सोचे कि अल्लाह ताला के आगे एक एक मखलूक के आगे इतना बेबस है, अल्लाह के आगे क्या इंसान की हैसियत है, अल्लाह ताला के आगे इंसान क्या खड़ा रह सकता है, जब वो एक नींद के आगे भी नहीं खड़ा रह सकता, उसके आगे भी बेबस हो जाता है। तो इंसान अपनी हैसियत को पहचाने के इंसान तो क्या चीज है कि तेरे अंदर तो इतनी भी ताकत नहीं, वैसे इंसान बहुत बड़ी चीज बनता है, बहुत अकड़ता है, लेकिन देखो कि इंसान कितना बेबस हो जाता है, कितना बेबस हो जाता है कि इंसान से अपने आप को संभाला भी नहीं जाता। अब ये देखें कि अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला इस एक्सपीरियंस से रोजाना इंसान को गुजारता है, हर रात इंसान इस एक्सपीरियंस से गुजरता है कि वो नींद में से जाता है और फिर उठता है, नींद से निकलता है और फिर उठता है। अल्लाह ताला याद कराता है कि देखो इसी तरह एक दिन तुम्हें मौत आ जानी, और मौत से भी तुम उसके बाद दोबारा उठाए जाओगे, मौत से भी तुम्हारी दोबारा इस जो बासबादुल मौत का इनकार करते हैं वो ये देखें कि वो कैसे इनकार करते हैं, जबकि वो रोजाना उठते हैं, रोजाना सोते हैं, रोजाना उठते हैं, और फिर उसके बाद फिर इनकार कर देते हैं कि एक दिन वो ऐसे उससे गुजरेंगे कि वो दोबारा वो उठाए नहीं जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? तो इसलिए इंसान समझे इस चीज को, और इससे हमारा ईमान पुख्ता हो जाना चाहिए कि हम लोग जो इस चीज का मुशाहिदा करते हैं रोजाना की बुनियाद पर कि अल्लाह ताला जरूर उठाएगा एक दिन। और इसी पे एक जो दुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, रात को सोने की दुआ, वो बहुत ही इतनी खूबसूरत दुआ, और उसी के अंदर भी इसी चीज को बयान किया गया और हमें ये बात समझा दी गई है कि किस तरह इंसान जब सोएगा और फिर वो अगर अल्लाह ताला उसकी रूह को वापस नहीं भेजता तो उसका उसके साथ अल्लाह ताला क्या मामला करे। सोचें जब हर रात इंसान ये सोच के सोए कि पता नहीं मेरी रूह वापस लौटाई जाती है या नहीं, पता नहीं अल्लाह ताला अगर मुझे नींद में ही मौत दे देगा तो मेरा फिर क्या होगा। अगर इंसान ये रात को सोच के सोए तो जाहिर है फिर बहुत चीजों पे तौबा इस्तगफार भी कर सकता है, फिर जाहिर है किसी को माफ भी कर सकता है, फिर जाहिर है इंसान बहुत सारे जो ग्रजेस दिल के अंदर है वो भी निकाल सकता है। तो बुखारी और मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम में से कोई बिस्तर पर सोने के लिए जाए तो अपने तहबंद के अंदरूनी हिस्से से उसको झाड़ ले, अब ना जाने इस पर क्या कुछ हो। यानी सबसे पहले क्या करें, अब आपके पास मतलब तहबंद तो हमारे पास नहीं है, मतलब हमारा दुपट्टा या हमारी चादर है उससे अगर हम बिस्तर को झाड़ लें, और उसको इसलिए नहीं कि पता नहीं हमारे बिस्तर पे कोई सांप ना हो या कुछ है और हमें तो नजर आ रहा है और कुछ भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि इसको सोचे कि इससे झाड़ ले ताकि पता नहीं अल्लाह बेहतर जानते हैं कौन सी कोई मखलूक हो, क्या हो बिस्तर के ऊपर हम नहीं जानते। फिर ये दुआ पढ़े, बिस्मी का रब्बी वदातु जम्बी, ए मेरे रब मेरे पालने वाले, मैं तेरे नाम से अपना पहलू अपने बिस्तर पे रखता हूँ, वह भी का अरफा हो, और मैं तेरे नाम से ही उसको उठाता हूँ यानी अपने आप को, इन अमसकता नफसी, अगर तू मेरी जान को कब्ज कर ले, फरहमहा, तो तू इसके ऊपर रहम फरमाना, वह इन अरसलता, और अगर तू भेज दे इसको यानी वापस मेरी रूह लौटा दे, फहफजहा, तो इसकी हिफाजत करना, बीमा तहफज बिही इबादत सालेहीन, जैसे कि तू नेक बंदों की हिफाजत करता है ऐसे मेरी इस रूह की हिफाजत करना, यानी अल्लाह यानी दिन जब चढ़ता है तो जैसे नेक बंदे होते हैं तेरे, तू उनकी हिफाजत करता है, अल्लाह इसी तरह मेरी हिफाजत करना, अगर तू मेरी रूह को रोक ले फिर इसके ऊपर रहम फरमाना, यानी अगर मैं मर जाऊं नींद के अंदर ही तो अल्लाह तू रहम करना, और अगर मैं जाग जाऊं मैं वापस आ जाऊं तो ऐ अल्लाह मेरी रूह की हिफाजत करना, कितनी प्यारी दुआ है ना। यानी दिन अगर मेरा शुरू होता है, आप देखें दिन के अंदर कितनी चीजें हैं जो शर पहुंचाने वाली हैं, कितने फितने हमारे इर्द गिर्द होते हैं, कितना कुछ होता है, तो अल्लाह ताला तू इसमें हमारी हिफाजत करना। ये इतनी खूबसूरत दुआ है कि हम सबको ये याद कर लेनी चाहिए, और जब तक नहीं याद होती तो इसको अपने पास रखें और हम इसको मांग के सोया करें, इस दुआ को। इसके बगैर ना हम रात को सोएं, क्योंकि हमने अपने रात अपनी नींद से पहले भी ये दुआ कर ली, तो ये दुआ कबूल हो जाए तो सोच लें कि फिर अल्लाह ताला की का रहम होगा। अगर अगर अल्लाह ताला ने हमें मौत दे दी, और अगर अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी दी, तो फिर भी अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। तो इसलिए ये सुभान अल्लाह इतनी खूबसूरत दुआ भी है, और ये आयत हमें बताती है कि हमारी हम मौत के एक एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, फिर कितना इस चीज के ऊपर भी इंसान को रात को सोचना चाहिए कि मैं एक ऐसे एक्सपीरियंस से गुजर रही हूँ, मेरे अल्लाह की कुदरत है, अगर वो मेरी जिंदगी लौटा दे तो ये उसकी मेहरबानी। यानी आप ये सोच लेना कि इसके बाद आप अल्लाह ताला के आगे और ज्यादा झुक जाते हैं, और ज्यादा अल्लाह ताला की उसकी कुदरत का एहसास करते हैं, और अपनी बेबसी का भी, कि अल्लाह मैं अब कोई ऐसा तो नहीं कह सकता कि मैंने सोना ही नहीं है, मैंने सोना नहीं है, मैंने बस जागे ही रहना है, और मैं तो इससे गुजरना ही नहीं चाहता, ऐसा कोई नहीं कह सकता। जो भी इंसान इससे गुजरता है, हर इंसान गुजरता है, और हर मखलूक सरती, आप देखिए जानवर भी सोते हैं, इंसान भी सोते हैं, तो सारे जो जितने भी चरिंद परिंद सबको नींद का गलबा आता है। कैसी अल्लाह ताला ने ये एक मखलूक बनाई है ना, इस पे कभी भी नहीं गौर करते हम कि ये क्या चीज है, हमें पता भी नहीं चलता, हम नींद की आगोश में चले जाते हैं, उसके बाद हम उठते हैं, और कितनी दफा ये पता नहीं हमारी रूह आती और जाती है, कितनी दफा ऐसा होता है हम रात को आंख खुलती है, फिर उसके बाद हम फिर चले जाते हैं नींद में, फिर हमारी आंख खुलती, फिर नींद में चले जाते। तो अल्लाह ताला की ये निशानी है, इसका मतलब नींद भी अल्लाह की निशानी है, मौत भी अल्लाह की निशानी है, और ये रूह का निकलना और वापस आना ये भी अल्लाह की निशानी है, ये सब अल्लाह ताला की निशानियां। इनके ऊपर इंसान गौर व फिक्र करे तो अल्लाह ताला को पहचान ले। जो इंसान अपने आप को समझते हैं कि हम खुदा हैं, या जो समझते हैं कि हम बहुत कुव्वत और ताकत वाले हैं, या जिनको किसी ने खुदा बनाया हुआ है, वो देख लो वो तो कितने बेबस हैं कि वो भी नींद से आजाद नहीं, पाक नहीं। जिनको भी लोग पूछते हैं, चाहे वो कितने ही बुजुर्ग हो, कितने ही बड़े औलिया अल्लाह हो, खुद सोचे अगर वो दुनिया से चले भी गए, या जो दुनिया में हैं उनके ऊपर बहुत भरोसा करते हो कि ये हमारे काम बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, ये हमें कुछ दे सकते हैं, वो तो इतनी भी कुदरत नहीं रखते कि वो अपनी नींद पे काबू पा सके और इसको अपने से हटा सके। वो भी सो जाते हैं और आधी मौत का एक्सपीरियंस कर लेते, और एक जात सिर्फ है जो ला तखुज़ुहू सिनतुन वला नौम, जिसको ना ऊंग है और ना मौत है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, वो सिर्फ अल्लाह की जात है, ये उसको ऊंग तक नहीं है, ऊंग तक नहीं है, ना नींद है ना मौत है, अल्लाह हु अकबर। तो ना अच्छा, जो नींद है वो तो ज्यादा गहरी चीज है, ऊंग तो उससे बहुत हल्की चीज है, ऊंग तक नहीं अल्लाह ताला को आती, ये वो हमेशा से है और हमेशा तक रहेगा, और बगैर किसी गफलत के, बगैर किसी आराम के, इन सब चीजों से वो पाक है। और ये इंसानी कमजोरी है कि वो नींद से पाक नहीं है, इंसान की कमजोरी है कि वो नींद उसकी जरूरत है, वो उसको सोना ही सोना है, वरना वो जिंदा रह ही नहीं सकता, वो खत्म हो जाएगा अगर वो सोए ना। तो सुभान अल्लाह, ये इस निशानी पे भी आप गौर करिएगा और इससे अपने रब को पहचानिएगा। अम इत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि शुफ़ाअ, क्या वो बनाते हैं या उन्होंने बना रखे हैं अल्लाह के सिवा सिफारशी, कुल कह दीजिए, अवलौ कानू, क्या भला अगर वो हों, ला यमलिकून शैअन, नहीं मिल्कियत रखते किसी चीज की, वला याकिलून, और ना वो अकल रखते हैं, क्या इन्होंने अल्लाह की सिफारशी बना ली है जबकि वो कोई चीज की भी मिल्कियत नहीं रखते, उनको कैसे तुमने, यानी किसने तुम्हें ये इख्तियार दिया, किस इख्तियार के तहत तुम ये सोचते हो कि हमारे सिफारशी हैं और वो हमें बचा लेंगे। दो तरह की सिफारिश के बारे में बातें मुशरिकी ने मक्का करते थे। एक तो ये कि हम इनको इसलिए पुकारते हैं कि अल्लाह ताला के यहाँ ये हमारी सिफारिश कराएं और हमें रिस्क मिले, हमें हमारे हमारे रोजी में ज्यादा ज्यादती हो, हमें नेमते मिले। और दूसरा वो ये कहते थे कि हम इसलिए इनको पुकारते हैं कि ये हमें अल्लाह ताला से करीब कर देंगे और हमारी शिफात करेंगे कयामत के दिन, और हमारी हमें इनकी शिफात की वजह से कयामत के दिन निजात मिल जाएगी, हमारी बख्शिश हो जाएगी। आज भी बहुत सारे लोगों का ये अकीदा है कि फलां फलां हमारे सिफारशी होंगे और उनको हम थाम लेंगे तो वो हमें पार करा देंगे। अब ये सोचना चाहिए कि क्या उनके पास कोई किसी चीज की मिल्कियत है, क्या वो कोई अकल रखते हैं। अकल इसलिए यहाँ पे कहा गया क्योंकि मुशरिकी ने मक्का तो लकड़ी के बुतों को पूजते थे, पत्थर के बुतों को पूजते थे, उनमें क्या अकल है। और मालिक तो किसी चीज के भी नहीं, कितमीर तक के मालिक नहीं, एक खजूर की गुठली के ऊपर जो इतना सा धागा होता है, अल्लाह ताला ने फरमाया इस चीज तक के मालिक नहीं। सिफारशी कहाँ से बनेंगे। अभी हमने बात की कि नींद तक के ऊपर भी किसी का कंट्रोल नहीं, अगर वो जिंदा है तो, और अगर वो जिंदा ही नहीं है, कोई पत्थर की चीज है तो वो क्या चीज है, वो उसके अंदर तो वैसे ही कोई अकल ही शहूर ही नहीं है, ना वो किसी की मिल्कियत रखते हैं। तो किसी को ना इख्तियार है कि वो खुद सिफारशी बन जाए कि मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा, और ना ही किसी को ये इख्तियार है कि वो किसी और को सिफारशी बना ले, ये भी नहीं इख्तियार। यानी हम में से कोई उठ के ये नहीं कह सकता मैं जी फलां को अपना शिफात के करने वाला बना लूंगा, फलां मेरा सिफारशी बन जाएगा, ये नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी किसी चीज की मिल्कियत नहीं रखता। मिल्कियत फिर किसकी है। कुल लिल्लाहि शफातु जमिया, कह दीजिए अल्लाह ही के लिए शिफात है सारी की सारी, यानी शिफात का मालिक अल्लाह है, ये इख्तियार अल्लाह का है, मेरा आपका किसी और का भी इख्तियार नहीं है। इवन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा नहीं होगा कि आप समझते हैं कि राइट अवे जाके सिफारिश शुरू कर देंगे, किसी की भी शिफात करने लगेंगे, अल्लाह इसको बख्श दे, ऐसा नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना अरसा अल्लाह ताला के आगे झुके रहेंगे, उसकी हम तस्बीह बयान करेंगे, वो भी फरमाया कि अल्लाह ताला उस वक्त ही मुझे सिखाएगा, पता नहीं कितना अरसा इसमें गुजर जाएगा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर अल्लाह ताला मुझे फरमाएगा कि अपना सर उठाओ और मांगो और सिफारिश करो, तुम्हारी शिफात कबूल की जाएगी। तो ऐसा नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इख्तियार से जाते ही करने शुरू जाएं, या अल्लाह इसको माफ कर दे, इसको माफ कर दे, और इसको मैंने बचा लिया, और मैंने इसको, और ये इसको तो तुझे माफ करना ही पड़ेगा, नाउज़ु बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ये कैसी बात हम सोचते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये हाल है, कोई और कैसे उठ के एकदम अपने से कह सकता है कि मैं फलां की शिफात करने के लिए खड़ा हो गया। तो यानी शिफात सारी की सारी अल्लाह के हाथ, जिसको चाहे ये इख्तियार दे कि वो शिफात करे, और जिसके लिए चाहे वो इख्तियार दे कि वो उसकी सिफारिश की जाए, उसके लिए सिफारिश की जाए। समझ आए, दोनों बातें समझ लें, यानी शिफात के मामले में ये बात समझनी चाहिए कि कौन शिफात करेगा ये भी अल्लाह ने फैसला करना, किसके लिए शिफात करेगा ये भी अल्लाह ने फैसला करना। इसीलिए तो कुल लिल्लाहि शफा तो जमीआ, सारी की सारी शिफात उसके हाथ में, बंदे के हाथ में फिर क्या है। क्या आप सोचते हैं अपनी मर्जियों से लोगों से शिफाते करते रहेंगे, नहीं, उनका क्या इख्तियार है, और या उनके पास क्या मिल्कियत है किसी चीज की कि वो शिफात करने के लिए खड़े हो जाए और कहेंगे हमारा हक है शिफात करने का। वहां पे सब बेबस होंगे, नफसी नफसी की पुकार होगी, वहां पे तो इंसान अपनी जान के लिए पहले फिक्र कर रहा होगा, किसी और की क्या फिक्र करेगा। और उसके बाद हाँ अल्लाह ताला इजाजत देगा, लेकिन वो किस लिए, किसलिए देगा इजाजत? इसलिए ताकि उन लोगों को ऑनर दिया जाए जिन लोगों को अल्लाह ताला शिफात का इख्तियार देता है, उनको इज्जत देने के लिए। जैसे हम मिसाल के तौर पे आप देखते हैं ये तकरीबात के अंदर जब इनामात दिए जाते हैं या कोई 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 और ऐसी चीज, सर्टिफिकेट या डिग्री दी जाती है, तो फिर कुछ गेस्ट होते हैं, उनको बुलाया जाता है, जी आप आए और आप स्टूडेंट्स के अंदर ये तकसीम करें। अब उसने तो नहीं फैसला किया ना, वो तो आके आप उसको एक इज्जत दे रहे हैं, आप उसको स्टेज पे बुलाते हैं फिर वो देता है, तो अब वो तो ना चूज कर रहा है ना उसको कोई पता है, वो तो बस देने वाला है, तो आपने असल में उसको इज्जत दी है। तो अल्लाह ताला कुछ लोगों को खड़ा करेगा, आप शिफात करेंगे क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको बख्शना होगा, इसलिए अल्लाह ताला उनको खड़ा करके उनसे फरमाएगा आप सिफारिश करें, आपकी सिफारिश के ऊपर इनको मैं बख्शूंगा। तो असल में शिफात फिर किसके हाथ में हुई? अल्लाह के हाथ में। तो अल्लाह को राजी करने की जरूरत है, ना कि दरगाहों पे जाके चादरें चढ़ाने की कि ये हमारी सिफारिश करेंगे इसलिए हम यहाँ पे चादरें चढ़ा रहे हैं। लहू मुल्क समावाती वल अर्द, उसी के लिए बादशाहत आसमानों की और जमीन की, तुम इलैहि तुरजऊन, फिर उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। आसमानों की बादशाहत उसके पास, जमीन की बादशाहत उसके पास, तो उसी का हक है ना कि वो ही शिफात का हक जिसको भी दे, वो जिसको चाहे बख्शे, तुम्हें उसकी तरफ लौट जाना। फिर सब जब चीजें उसी के हाथ में है तो शिफात भी तो उसके हाथ में है। وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ, और जब जिक्र किया जाता है अल्लाह का, वहदहु अकेले उसी का, ये अब मुशरिकीन का हाल बयान किया जा रहा है यहाँ पे कि जब अकेले अल्लाह की बात होती है, हालांकि किसका मतलब है कि वो अल्लाह ताला के ऊपर तो बिलीव करते थे, जी हाँ वो ये कहते थे कि एक अल्लाह है जो कि सबसे ऊपर है मगर ये उसके शरीक है, ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि वो इनकार करते थे। इसीलिए आज उलमा कहते हैं ना कि वो उन लोगों का शिर्क या कुफर में तो सारे ही हैं जो आज भी हैं, लेकिन उनका कुफर कम अज कम इनके कुफर से तो बेहतर था, क्योंकि वो एक अल्लाह को तो मानते थे ना, इन्होंने तो बिल्कुल ही इनकार कर दिया, खुदा है ही नहीं कोई। वाइदा ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, जब एक अल्लाह का जिक्र किया जाता है अकेले अल्लाह का, तो दिल तंग होते हैं किनके? उन लोगों के जो ईमान नहीं रखते आखरत पर, यानी ये नहीं कहा गया जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, आखरत पर ईमान नहीं रखते। जब आखरत का ईमान नहीं होता ना, तो अल्लाह पर ईमान है भी अगर, तो वो किसी काम का नहीं है,